अरुणिमा जैसे ही नीचे फर्श पर गिरी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसके हाथों से कैरी बैग छूटकर जमीन पर गिर गया था और उसमें रखा ग्रॉसरी का सामान चारों तरफ बिखर गया था। लेकिन अरुणिमा के डर की असली वजह वो प्रेग्नेंसी किट थी जो सोफे के पैरों के नीचे गिरी हुई थी। सामने लावण्या बैठी थी, जिसने हैरानी से अरुणिमा की तरफ देखा, यहां तक कि डॉक्टर भी उसे देखने लगे थे। अरुणिमा जल्दी से खड़ी होते हुए बोली, अरे ये क्या हुआ मिसेज रायचंद, आप गिर कैसे गईं? अरुणिमा की घबराहट की असली वजह वो प्रेग्नेंसी किट ही थी। उसने डरी हुई नजरों से उन दोनों को देखा। जब उसे एहसास हुआ कि उनका ध्यान नीचे गिरे हुए सामान पर नहीं बल्कि उस पर ही है, तो उसने बहुत चालाकी से हल्दी नमक के पैकेट के साथ साथ प्रेग्नेंसी किट भी लपक ली। डॉक्टर जब तक उसके पास आती तब तक वो आधे से ज्यादा सामान पैकेट में रख चुकी थी। वो बोली, नहीं डॉक्टर, आपको आने की जरूरत नहीं है, बस मेरा पैर फिसल गया था। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी। अरुणिमा खड़ी हो गई थी। डॉक्टर उसके पास आ चुकी थी लेकिन उसे देखते हुए बोली, मिसेज रायचंद मुझे चेक तो करने दीजिए, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? लेकिन अरुणिमा ने जल्दी से पैकेट अपने पीठ के पीछे छुपाते हुए कहा, नहीं नहीं डॉक्टर, मैंने कहा ना मुझे चोट नहीं आई है, आप बस दो मिनट इंतजार कीजिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये कहते हुए वो कमरे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची लावण्या ने उसे रोक लिया। अरुणिमा, ये किचन का सामान तुम कमरे में कहाँ लेकर जा रही हो? इसे किचन में रखवा दो ना, किसी सर्वेंट को दे दो, वो रख देगा। अरुणिमा के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, हाँ दरअसल मैं चेक करना चाहती हूँ कि सारा सामान लेकर तो आई हो ना, कहीं लिस्ट में से कुछ छूट तो नहीं गया, मैं इसे बाद में खुद ही किचन में रखवा दूंगी। ये कहकर वो तेज कदमों से कमरे की तरफ भाग गई। लावण्या हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्या पागल लड़की है। जैसे ही अरुणिमा कमरे में पहुंची उसने सारा सामान टेबल पर फेंका और एक राहत की सांस ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, बस वही जानती थी कि इतनी देर में उसकी क्या हालत हो गई थी। उसने जल्दी से सामान के बीच से प्रेगनेंसी किट निकाली और टेस्ट करने का सोचा। हालांकि किट पर लिखा था कि सुबह की पहली यूरिन से रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी कन्फर्म हो तो कभी भी रिजल्ट देखा जा सकता है। अरुणिमा सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी, डॉक्टर बाहर इंतजार कर रही थी। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने किट पर लिखी हिदायतों के अनुसार यूरिन की कुछ बूंदें टेस्ट ट्यूब में डाली। जैसे जैसे ट्यूब का रंग बदल रहा था अरुणिमा की हालत और खराब होती जा रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी और निगाहें सिर्फ रिजल्ट पर टिकी थी। जैसे ही प्रेगनेंसी किट पर पहली लाल रेखा उभरी अरुणिमा का चेहरा पसीने से भीग गया, पर जब दूसरी लाइन पूरी तरह ब्लैक हुई तो उसने एक राहत की सांस ली। टेस्ट पर सिर्फ एक ही लाल रेखा उभर कर आई थी जबकि प्रेगनेंसी कन्फर्म होने के लिए दो लाल रेखाओं का होना जरूरी था। अरुणिमा इतनी सुकून की सांस ले रही थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। उसने एक राहत भरी सांस ली और खुद को शांत करने लगी। अपनी आंखें बंद करके वो एक गहरी और ठंडी सांस लेती है जैसे कितना सुकून पा रही हो। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली और उसकी नजर दोबारा प्रेगनेंसी किट पर पड़ी, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं, क्योंकि दूसरी लाल रंग की रेखा धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगी थी। कभी कभी प्रेगनेंसी किट में रिजल्ट आने में 5 मिनट तक का समय लगता है। अरुणिमा ने जैसे ही उस पर दो लाल रेखाएं देखी उसे सच्चाई समझ आ गई। वो प्रेगनेंसी किट वहीं जमीन पर फेंक देती है और बाथरूम की दीवार से लगकर डरी हुई नजरों से उसे देखने लगती है। जितना सुकून और रिलैक्स वो अभी महसूस कर रही थी उतनी ही घबराहट उसे दोबारा होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सूरज उसकी देह पर चुभ रहे हों। अचानक से उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आस्तिक के कहे एक एक शब्द उसे याद आने लगते हैं। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहिए। इसके अलावा ना तो मुझे किसी बच्चे में इंटरेस्ट है और ना ही मैं कभी भविष्य में किसी बच्चे की झंझट काटना चाहता हूँ। आस्तिक इस बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अरुणिमा को लगा उसका पूरा जीवन समाप्त हो चुका है। अगर आस्तिक को इस बारे में पता चल गया तो वो उसे जान से मार देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आस्तिक को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। मुझे मार देगा? नहीं, वो मुझे कैसे मार सकता है? अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा। अचानक से अरुणिमा के अंदर एक बदलाव आ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये बदलाव उसके मातृत्व का था। वो अंश जो अभी उसके गर्भ में राई के दाने के समान था, जिसका अस्तित्व अभी तक पूरी तरह से आकार भी नहीं ले पाया था, उसके लिए अरुणिमा का दिल अचानक डर और चिंता से भर गया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अपने सपाट पेट पर रख दिया। उसके अंदर एक जीवन पल रहा था, कोई उसके अंदर सांस ले रहा था। एक अलग सी अनुभूति, एक अलग सी विचारधारा उसके पूरे मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करने लगी। ये एक अनोखा एहसास था जो वो पहली बार महसूस कर रही थी। आस्तिक के दिए हुए डर और प्रताड़ना से अलग अब तक उसे सिर्फ तकलीफें और दर्द ही मिले थे, लेकिन इस पल वो कुछ और महसूस कर रही थी। ये एहसास अच्छा है या बुरा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है ये मेरे लिए सुकून देने वाला है। अरुणिमा की आंखों से एक आंसू टपका और उसके हाथ पर गिर गया। उसने धीरे से अपने हाथ को देखा जो उसके पेट पर रखा हुआ था। एक नन्ही सी जान जिसने अभी तक अपने अस्तित्व को पूरी तरह से पहचाना भी नहीं था, वो आस्तिक के गुस्से का शिकार बन जाएगा। क्या होगा अगर आस्तिक मेरे बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार देगा? ये ख्याल ही अरुणिमा को अंदर तक झकझोर कर रख देता है। वो घबरा गई और डरते हुए कांपने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया जैसे अपने बच्चे की रक्षा कर रही हो। डरते हुए उसने मन ही मन कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी को भी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। अगर आस्तिक को ये बच्चा नहीं चाहिए तो ना सही, लेकिन मुझे चाहिए। मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी और हर वो हाथ काट दूंगी जो मेरे बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तेजी से सांस लेते हुए अरुणिमा सिंह के पास जाती है और सबसे पहले पानी चलाकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। अपना मुंह धोकर उसने गहरी सांस ली और खुद को आईने में देखने लगी। हालांकि प्रेगनेंसी किट पर लिखा हुआ था कि कई बार इसके परिणाम नकारात्मक होने के बावजूद सकारात्मक दिखा सकते हैं और सही परिणाम के लिए डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है। अरुणिमा ने सोच लिया था कि वो डॉक्टर से इस बारे में बात करेगी, लेकिन जो डॉक्टर घर पर आया था उससे नहीं, क्योंकि वो आस्तिक का भेजा हुआ था। इसके लिए अरुणिमा किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेगी, पर आस्तिक की परमिशन के बिना ये मुमकिन नहीं था। वो उसे बिना इजाजत घर से बाहर जाने नहीं देता था। फिलहाल के लिए अरुणिमा ने इस बात को संभालने का फैसला किया। खुद को शांत करने के बाद उसने सबसे पहले प्रेगनेंसी किट को उठाया और उसे अच्छी तरह से छुपाने की जगह ढूंढने लगी। हाँ, वो इसे फेंकने वाली नहीं थी। ये वो पहली चीज थी जिससे उसने अपने बच्चे के होने का एहसास किया था। वो इसे कैसे फेंक सकती थी? पहली बार उसे ममता का एहसास हुआ था। ये प्रेगनेंसी किट उसके लिए सिर्फ एक किट नहीं थी, बल्कि उसके बच्चे की खबर उसे देने का एक माध्यम थी। उसने प्रेगनेंसी किट को बहुत अच्छी तरह से छुपाया था। कम से कम उसे तो लग रहा था कि ये आस्तिक की नजर में नहीं आएगी।
कमरे से बाहर आकर अरुणिमा हॉल में आती है। वो देखती है कि लावण्या और डॉक्टर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर को देखकर उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। डॉक्टर, आप मेरे कमरे में आकर मेरा चेकअप कर लीजिए, अरुणिमा ने सहज स्वर में कहा। डॉक्टर ने सहमति में सिर हिलाया, अपना बैग उठाया और अरुणिमा के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। लावण्या हैरानी से अरुणिमा को देख रही थी। उसके चेहरे का रंग कुछ बदला बदला सा लग रहा था, पर उसने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कमरे में पहुंचकर जैसे ही डॉक्टर ने अपना किट निकाला, अरुणिमा ने जल्दी से उन्हें रोकते हुए कहा, डॉक्टर, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मेरे हस्बैंड ने आपको खुद ज्यादा ही बता दिया होगा। वैसे मुझे कोई खास परेशानी नहीं है, बस सिर में हल्का दर्द हो रहा है, तो आप मुझे कोई सिर दर्द की दवाई दे दीजिए। डॉक्टर ने हैरानी से अरुणिमा को देखा और बोली, लेकिन आपके हस्बैंड ने तो बताया कि आपको उल्टियां हो रही हैं। अरुणिमा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, दरअसल सुबह लावण्या ने अंडे बनाए थे और मुझे अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुझे मितली आ गई थी। आप तो समझ सकती हैं, जैसे जो लोग फिश नहीं खाते उन्हें उसकी स्मेल पसंद नहीं आती और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उन्हें नॉनवेज की महक अजीब लगती है। उसी तरह मैं अंडे नहीं खाती और मुझे उसकी गंध बहुत खराब लगती है। ऊपर से लावण्या तो अंडे फ्राई करके बना रही थी। अब आप ही सोचिए मुझे कितनी उल्टी सी फीलिंग आ रही होगी। इसी वजह से मेरा सिर भी दर्द करने लगा। डॉक्टर ने अरुणिमा की बात सुनी और अपने बैग से एक सिरदर्द की दवाई निकालकर उसे देते हुए कहा, ठीक है, आप इसे गर्म दूध के साथ ले लीजिएगा, इससे आपका सिरदर्द ठीक हो जाएगा। वैसे अगर कोई और परेशानी होगी तो 3 दिन बाद तो आप हॉस्पिटल आ ही रही है ना, मैं वहां पर आपका चेकअप कर लूंगी। डॉक्टर की बात सुनकर अरुणिमा हैरान हो गई। उसने चौंक कर कहा, मैं समझी नहीं डॉक्टर, मैं 3 दिन बाद किस चेकअप के लिए हॉस्पिटल आ रही हूँ? डॉक्टर ने उसे हैरानी से देखा और बोली, कमाल है, आपको नहीं पता, मुझे लगा आपके हस्बैंड ने आपसे परमिशन ली होगी। किस चीज़ की परमिशन? अरुणिमा ने आश्चर्य से पूछा। डॉक्टर ने जवाब दिया, आपके हस्बैंड सरोगेसी के जरिए एक बच्चा चाहते हैं और मिस लावण्या सरोगेट मदर हैं। जी डॉक्टर, मैं इस बारे में जानती हूँ, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? अरुणिमा ने सवाल किया। डॉक्टर बोली, आपके हस्बैंड चाहते हैं कि सरोगेट मदर जिस बच्चे को जन्म दे उसमें आपके और आपके हस्बैंड दोनों के DNA मौजूद हों, इसलिए सरोगेसी की प्रक्रिया के लिए आपको डोनेशन के लिए हॉस्पिटल आना होगा। उससे पहले कुछ टेस्ट होंगे, तब मैं आपका चेकअप कर लूंगी। अरुणिमा डॉक्टर की बात सुनकर हैरान रह गई, लेकिन इस वक्त उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने हल्का सा सिर हिलाया जैसे इस बात से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर वहां से चली गई और उसके बाद अरुणिमा सोच में डूब गई। मतलब आस्तिक लावण्या के साथ बच्चा चाहता है, लेकिन वो इसके लिए मेरे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता, बल्कि IVF के जरिए मेरे अंदर अपना ही बच्चा इंसर्ट करना चाहता है। सिर्फ गर्भ लावण्या का होगा, लेकिन बच्चे के अंदर DNA आस्तिक और मेरे ही होंगे। फिलहाल अरुणिमा लावण्या या सरोगेसी के बारे में नहीं सोच रही थी, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। उसे किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना था, मतलब उसके पास अब 3 दिन थे जिसमें वो डॉक्टर से अपना चेकअप करवा सकती थी और कंफर्म कर सकती थी कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। डॉक्टर जा चुकी थी और अरुणिमा अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। बाहर जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि वो लावण्या से कोई बात नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उससे बात करने का कोई फायदा नहीं था। हालांकि जब वो एक बार पानी लेने के लिए किचन में गई तो उसने लावण्या को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। ये लड़की 24 घंटे फोन पर ही लगी रहती है, पता नहीं किससे और क्या बात करती रहती है। अरुणिमा बड़बड़ाई और वापस अपने कमरे में आ गई। रात का डिनर भी किस्मी और घर की दूसरी मेड ने बनाया था। अरुणिमा का मन कुछ भी खाने का नहीं था। उसने हरी सब्जियां खाने की कोशिश की, लेकिन उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। दाल की महक तो उसे अंडे से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। वो बस किसी तरह ये दो दिन गुजारना चाहती थी, ताकि उसके बाद जाकर वो कन्फर्म हो सके कि वो सच में प्रेग्नेंट है। हालांकि उसे किट के नतीजे पर भरोसा था, लेकिन वो एक बार खुद से कन्फर्म होना चाहती थी। डॉक्टर की बात उसे ज्यादा सही लग रही थी। तभी दरवाजा खुला और आस्तिक अंदर आया। उसे देखकर अरुणिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसका मन घबरा गया, लेकिन जब उसने आस्तिक को देखा तो उसकी घबराहट कुछ कम हो गई। अब उसके चेहरे पर हैरानी थी। आस्तिक नशे में घर आया था। उसकी सफेद शर्ट के ऊपर के 3 बटन टूटे हुए थे और शर्ट मैली हो चुकी थी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और चेहरा हताशा से भरा हुआ था। अरुणिमा ने पहली बार आस्तिक को इस हालत में देखा था। हालांकि वो जानती थी कि आस्तिक ड्रिंक करता है और स्मोक भी करता है, लेकिन उसने कभी भी नशे को खुद पर इतना हावी नहीं होने दिया था। यहाँ तक कि ड्रिंक करने के बाद भी कोई नहीं कह सकता था कि उसने कितनी ज्यादा शराब पी रखी थी। पर आज आस्तिक अपनी रोज की हालत से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसका चेहरा हताशा से भरा हुआ था और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी।